नमस्कार भारत, आज है 26 जनवरी दिन गुरुवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने का काम जल्द शुरू करने के आदेश पर लगाई मुहर। भारत आज अपना 68वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र के बारे में भारत के आम लोग क्या सोचते हैं?
कश्मीरी बाशिंदों को इन दो दिनों पे घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, जिसका ये खुला सबूत है कि अभी भी हिंदुस्तान तो आजाद हुआ है लेकिन कश्मीर की हालत वैसी ही है जैसे बरतानिया के टाइम पे हिंदुस्तान की हालत थी।
दुनिया जहान में आज जानिए परमाणु हथियार से हमले की योजना को अमेरिकी राष्ट्रपति कैसे कार्यान्वित करते हैं और इसमें कितना वक्त लगता है।
It would take us no more than about one minute to carry out a launch.
होगी अखबारों की समीक्षा और खेल की खबरें भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अमर शर्मा से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार मेक्सिको और अमेरिका की सीमा पर दीवार बनाने का काम तुरंत शुरू कर देगी और अपने एक मुख्य चुनावी वादे को पूरा करेगी। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि दीवार बनाने से अवैध प्रवासियों और नशीली दवाओं के तस्करों को रोका जा सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वे दिन लद गए जब ये यहां रहकर कहर बरपा सकते थे। उन्होंने इस बात को फिर दोहराया है कि दीवार बनाने का खर्च मेक्सिको उठाएगा, बावजूद इसके कि मेक्सिको ऐसा करने से इनकार कर चुका है। अमेरिका का मुख्य शेयर बाजार सूचकांक डाउ जोन्स पहली बार 20,000 पॉइंट का आंकड़ा पार कर इतिहास रच चुका है। 30 बड़ी कंपनियों से बना डाउ जोन्स सूचकांक मार्च 2009 में वैश्विक आर्थिक मंदी में न्यूनतम स्तर तक जा पहुंचा था, जिसके बाद ये लगातार बढ़ता गया है। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से बाजार ने सकारात्मक संकेत दिए हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि उनकी नीतियों से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यूएस बैंक में सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर एरिक विगबैंड कहते हैं कि वे आश्चर्यचकित नहीं हैं।
There's no doubt about it. There has been a positive response. Some of the presidential initiatives that have been put in place.
इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा की गई कुछ पहलों को लेकर एक सकारात्मक प्रतिक्रिया है, जैसे एक्सेल पाइपलाइन को फिर से शुरू करना और अन्य कुछ चीजें। इसने निश्चित रूप से सामग्री निर्माताओं को फायदा मिला है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रसार बढ़ाने और करों में कटौती की उनकी नीतियों से खासतौर पर वित्तीय बाजार को फायदा मिला है। एरिक विगेंड के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। लीबिया में जिहादी लड़ाकों ने अपने आखिरी बचे मजबूत गढ़ और देश के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण शहर बेंगाजी को गंवा दिया है। सैन्य नेता फील्ड मार्शल खलीफा हेफ्तर के प्रति वफादार सैन्य बलों का कहना है कि उन्होंने आखिरकार स्थानीय इस्लामिक लड़ाकों को गनफाउदा जिले से खदेड़ दिया है। इस इलाके में महीनों से घेराबंदी है और बेंगाजी पर नियंत्रण को लेकर यहाँ सबसे भीषण लड़ाई लड़ी गई है। इन इस्लामिक लड़ाकों में से कुछ इस्लामिक स्टेट या अलकायदा से जुड़े हुए हैं। इनके खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व फील्ड मार्शल हेफ्तर ने किया, हालांकि उनके सैन्य बलों को संयुक्त राष्ट्र समर्थित लीबिया की सरकार से मान्यता नहीं मिली हुई है। लीबिया की राष्ट्रीय सेना के प्रवक्ता अहमद अल मिसमारी ने कहा, हम गनफाउदा जिले का आतंकियों के नियंत्रण से आजाद होने का ऐलान करते हैं और इस जीत के लिए हम लीबिया के सभी लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं। अहमद अल मिसमारी के शब्द। इस ऐलान के बाद लीबिया की सेना ने जीत की खुशी में अपने हथियारों से गोलियां चलाईं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता और शोधकर्ता बेला भाटिया को सरकार ने पूरी सुरक्षा मुहैया करवाई है। बस्तर में उनके रहने को लेकर भी जिला कलेक्टर को दिशा निर्देश दिए गए हैं। रमन सिंह कल बस्तर पहुंचे थे, जहां बेला भाटिया ने उनसे मुलाकात कर उन्हें एक चिट्ठी सौंपी, जिसमें उन्होंने अपने घर पर हुए हमले का जिक्र किया है। बीते कुछ सालों से बस्तर के आदिवासियों के बीच काम कर रही सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया के घर पर कुछ अज्ञात लोगों ने सोमवार को प्रदर्शन किया था और उन्हें बस्तर छोड़ देने की धमकी दी थी और ऐसा नहीं करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। अमरीका की मशहूर टेलीविजन और फिल्मी अदाकारा मेरी टाइलर मूर का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे अपने हास्य यथार्थवाद के लिए विख्यात हैं। उन्होंने 1960 के दशक में डिक वैन डाइक शो में गृहिणी के किरदार से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने 7 बार एमी टेलीविजन अवार्ड जीता और वे 1980 में फिल्म ऑर्डिनरी पीपल के लिए श्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित हुई थीं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप लगातार चुनाव अभियान के दौरान किए अपने वादे पूरे कर रहे हैं। कल उन्होंने ओबामा प्रशासन द्वारा रोकी दो पाइपलाइनों को हरी झंडी दी, तो आज अमेरिका में अवैध आप्रवासियों की समस्या से निपटने के लिए मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने का काम जल्द शुरू करने के आदेश पर मुहर लगा दी। इस काम में अरबों डॉलर का खर्च आएगा और ट्रंप ने कहा है कि इस खर्च का पाई पाई पैसा मेक्सिको से वापस लिया जाएगा। हालांकि इस आदेश को अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। एक ब्यौरे के साथ अमर शर्मा।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एबीसी न्यूज टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अमरीका और मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने का 100% खर्च मैक्सिको को लौटाना होगा। उन्होंने कहा,
अल्टीमेटली इट विल कम आउट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग विद मेक्सिको, वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग दोस नेगोशिएशंस रिलेटिवली सून।
हम मैक्सिको के साथ वार्ता जल्द शुरू करने वाले हैं और मैक्सिको एक तरह से हमारे पूरे खर्च को वापस लौटाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। हालांकि मेक्सिको सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। अरबों डॉलर के खर्च वाले इस काम के लिए ट्रंप को संसद की मंजूरी भी लेनी होगी। मेक्सिको और अमेरिका की सीमा पर 2000 मील लंबी दीवार बनाना ट्रंप के चुनावी वादों में से एक है। राष्ट्रपति ट्रंप ने देश में सुरक्षा बढ़ाने वाले एक अन्य कार्यकारी आदेश पर भी दस्तखत किया है। उन्होंने अमरीका के उन शहरों को दिए जाने वाले पैसों में कटौती किए जाने से संबंधित एक दस्तावेज पर भी दस्तखत किए हैं जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे अप्रवासियों के पनाहगाह बन गए हैं। ऐसी खबरें हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप चरमपंथ के संदिग्धों से की जाने वाली पूछताछ के तरीकों की भी समीक्षा करने वाले हैं। साथ ही वो अमेरिका के बाहर CIA द्वारा चलाए जाने वाले गुप्त कैदखानों को दोबारा खोलने की संभावना पर भी विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने ABC चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उनका मानना है कि यातना के फायदे हैं और वे पूछताछ में यातना के तरीकों के इस्तेमाल को मंजूरी दे सकते हैं। वहीं CIA के पूर्व निदेशक लियोन पेनेटा ने BBC को बताया कि वे अमेरिका द्वारा पूछताछ के पुराने तरीकों को दोबारा शुरू करने का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा,
My view is that when President Obama in his executive order said that we would not continue enhanced procedures,
मेरा मानना है कि जब राष्ट्रपति ओबामा ने अपने कार्यकारी आदेश में कह दिया कि हम पूछताछ के पुराने तरीकों को जारी नहीं रखेंगे और हम यातना नहीं देंगे, तो ऐसा फैसला लिया जाना इस देश के लिए एक बहुत जरूरी कदम था, क्योंकि ये पूरी दुनिया के सामने एक प्रतीक था कि हम अपने जिन मूल्यों पर विश्वास करते हैं हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए यही रास्ता सही है। अगर हम फिर से वही पुराने तरीके चालू कर देंगे तो इससे दुनिया में न सिर्फ हमारी छवि खराब होगी बल्कि ये देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी प्रभावी नहीं होगा। CIA के पूर्व निदेशक लियोन पेनेटा के शब्द। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर संकट के हालात हैं। ट्रंप के शासनादेश के तहत अमेरिका मैक्सिको सीमा पर गश्त बढ़ाने के लिए 10,000 आप्रवासन अधिकारियों की नियुक्ति की योजना है। राष्ट्रपति ट्रंप 7 अफ्रीकी और मध्य पूर्व के देशों से अप्रवासियों के आने पर प्रतिबंध लगाने पर भी विचार कर रहे हैं, जिनमें सीरिया, यमन और इराक शामिल हैं।
ब्यौरा सुना रहे थे अमर शर्मा। आज भारत का 68वां गणतंत्र दिवस है और दिल्ली सालाना जलसे के लिए पूरी तरह से तैयार है। करीब 44,000 सुरक्षाकर्मी राजपथ पर 26 जनवरी की परेड और वहां मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक से चौकसी बरती जा रही है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस परेड की सलामी लेंगे और उनके साथ भारत के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख, विपक्षी दल के नेता और आम लोग मौजूद होंगे। इस बार के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त अरब अमीरात के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान को आमंत्रित किया गया है। क्राउन प्रिंस जब बुधवार को दिल्ली पहुंचे तो प्रोटोकॉल तोड़कर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की। दोनों देशों के बीच कल 14 समझौतों पर दस्तखत हुए। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने JNU में प्रोफेसर रहे पुष्पेश पंत से पूछा कि क्राउन प्रिंस की भारत से नजदीकियां बढ़ने के भारत को क्या फायदे हो सकते हैं।
आप मोदी जी की कुछ भी आलोचना करें, उनके सत्ता ग्रहण करने के बाद से भारतीय विदेश नीति और राजनीतिक डिप्लोमेसी में एक गतिशीलता आई है। वो उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वो भारत के लिए सारे विकल्प खोलना चाहते हैं। ऐसा नहीं था कि UAE के बारे में हम नहीं जानते थे। आधे से ज्यादा हिंदुस्तानी वो 2-in-1 फ्लाइट होती थी, जब कांगो से लौटते थे बरास्ता दुबई, वहां से कुछ चीजें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीद के आते थे, फिर दुबई में लोगों ने काम करने के लिए जाना शुरू किया, कमाई के लिए जाना शुरू किया और कई हिंदुस्तानियों को वो ऐसा ऐशगाह नजर आने लगा जो सिंगापुर अगर पहुंच के बाहर था, हांगकांग बहुत दूर था, यूरोप में जाने में जान घबराती थी, तो एक ऐसी जगह थी जहां अरब लोग माफ कीजिएगा हिंदुस्तानियों को अपने से ज्यादा जाहिल, अकल के अंधे और गांठ के पूरे नजर आते थे, जो जिनकी खिदमत करके भी पैसा कमाया जा सकता था और जिनको बेवकूफ बना के भी पैसा कमाया जा सकता था। मगर बाद में ये हुआ कि जब तेल की पेट्रोडॉलर्स की कीमत से वो रेगिस्तान में दखलिस्तान बनने लगा तो बाकी सारे खाड़ी देशों में भी हिंदुस्तानियों को अपने लिए जगह लगी। तो जो एक्सपैट बिरादरी कहलाती है यूरोपियंस की, वो उनके लिए और बहुत सारे मुकाम थे, मगर जो बेचारे की बेचारगी के मारे हिंदुस्तानी थे यतामत के, उनके लिए दुबई एक ऐसा स्वर्गनुमा जगह थी कि जहां भले ही थोड़ा बहुत आपको दबके रहना पड़ता हो निजाम मुस्तफा में, मगर आप पैसा कमा के लौट सकते थे। हम सऊदी अरब का कुछ नहीं कर सकते, हम ईरान में बहुत कुछ दखलंदाजी नहीं कर सकते, मगर खाड़ी देश हो या ओमान हो, ये उस तरह की छोटी रियासतें रजवाड़े हैं जहां हिंदुस्तान की छाया एक बड़ी क्षेत्रीय ताकत की तरह होती है, और कम से कम पाकिस्तान की तुलना में भी इन देशों को हिंदुस्तान बेहतर लगता है। कुल मिलाकर ये एक ऐसा रिश्ता है एक अपने से छोटी साइज के पड़ोसी के साथ जो अमीर हमसे कहीं ज्यादा है, मगर उसकी अमीरी और रियासत वो अमेरिका की तरह हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती, न वो चीन की तरह ताकतवर है और न सऊदी अरब की तरह कट्टरपंथी का शिकार है। और एक दूसरा इसका पहलू है जो मुझे लगता है काफी टेढ़ा तिरछा है कि हिंदुस्तान के कुछ माफिया डॉन वहां जाके रहते रहे हैं, उन्होंने वहां से क्रिकेट मैचों को फिक्स करने की कोशिश की है, तस्करी की कोशिश की है, दहशतगर्दी को समर्थन देने की कोशिश की है, और हाल के दिनों में हिंदुस्तानी सरकार के असर से दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों की कुछ मिल्कियत वहां जब्त की है सरकार ने। तो ये आशा भी जगती है कि हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है कि बजरिए ओमान और खाड़ी देशों के पाकिस्तान को बाईपास करके क्या बाहर तक पहुंच सके। और कहीं ना कहीं चुनाव के मौसम में अगर आप एक मुसलमान शहजादे का खैर मकदम करते हैं और उसे शाही मेहमान बनाते हैं 26 जनवरी को, तो बिना चुनाव आचार संहिता को तोड़े तिरछा किए आप एक संदेश अपने यहाँ के अल्पसंख्यक मतदाताओं को पहुंचाते हैं कि मोदी जी इस्लाम के दुश्मन नहीं।
ये थे जेएनयू में प्रोफेसर रहे पुष्पेश पंत, जो मानते हैं कि क्राउन प्रिंस के दौरे के कुछ चुनावी निहितार्थ भी हैं। भारत को गणतंत्र बने 67 साल हो गए हैं, इस दौरान देश की आम जनता ने क्या खोया पाया और अब वो खुद को दुनिया की भीड़ में कहाँ खड़ा पाती है, ये जानने के लिए हमने गुवाहाटी, पटना, रांची और कश्मीर में कुछ लोगों से बात की। सुनिए उनका क्या कहना है।
मैं हर साल टीवी पर गणतंत्र दिवस की परेड देखती हूँ और फ्लैग हॉइस्टिंग के समय स्कूल में शामिल होती हूँ। अगर आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो हम इतने आज़ाद नहीं होते जितने हम आज हैं।
अगर हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन है लेकिन कश्मीरियों को उन दो दिनों पे भी घर में बंद रखा जाता है, कश्मीरी गवर्नमेंट या जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है वो कश्मीरी बाशिंदों को इन दो दिनों पे नहीं निकलने देते हैं, घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, जिसका ये खुला सबूत है कि अभी भी हिंदुस्तान तो आज़ाद हुआ है लेकिन कश्मीर की हालत वैसी ही है जैसे बर्तानिया के टाइम पे हिंदुस्तान की हालत थी।
हमारा गणतंत्र लगातार साल दर साल और मजबूत होता चला जा रहा है। कारण साफ है, लोग अपनी आज़ादी की जो बोलने की स्वतंत्रता है कहीं ना कहीं उसका ग्राफ बढ़ा है, लोग खुलकर बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं और संभावनाएं भी, चाहे वो देश के विकास की बात हो चाहे युवाओं के आगे बढ़ने की बात हो, संभावना भी लगातार इजाफा होता रहा।
हर 26 जनवरी को ये सेलिब्रेट करते हैं दिन, लेकिन ये करते हिंदुस्तान के स्टेट कश्मीर नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ है और तब से लेकर आज तक कश्मीर को कोई इशू उन्होंने आगे नहीं चलाया, क्योंकि कश्मीर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखते है। और पिछले 6 महीनों से जो कश्मीर में चल रहा है उसके बारे में ना कोई इंटरफेयर करता है और ना ही कुछ, बस यही बोलता है आज़ादी। आप मुझे बोलो कौन सी आज़ादी।
गणतंत्र का मतलब हमारा ये है कि जो हम सोचते हैं, जो हमारे अधिकार हैं, जो संविधान में निर्धारित किए गए हैं, वो हमें प्राप्त हों। कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि बोलने की आज़ादी, लोग कहते हैं बोलने की आज़ादी तो है लेकिन कई बार हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, उसकी आज़ादी हमें नहीं प्राप्त होती है।
ये थे भारतीय गणतंत्र दिवस पर अपनी राय रख रहे आम लोग। और अब दिल्ली से निकलने वाले अखबारों की समीक्षा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अमर शर्मा जी। अमर
जी, तमाम अखबारों ने आज, चूँकि 26 जनवरी है तो इसको लेकर अखबार ने हेडलाइंस बनाई हैं। अमर उजाला की जो पहली खबर है, हेडलाइन है कि सेना की जासूसी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, UPATS ने लखनऊ, सीतापुर, हरदोई से 10 युवकों को दबोचा है। और ठीक इसके बगल में उन्होंने जगह दी है कि जोशी, पवार और संगमा को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा जाएगा और विराट को पद्मश्री पुरस्कार मिलेंगे। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने पहली खबर लगाई है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले जो जवान थे उन्हें सेना इस बार सम्मानित कर रही है। 19 जवान जो उसमें शामिल थे उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर, और ये जो इसकी हेडलाइन है वो है कि बर्फबारी में दबा सेना का कैंप मेजर शहीद। इन्होंने बताया है खबर में कि कश्मीर के विभिन्न इलाकों में हिमस्खलन से 6 लोगों की मौत हुई है और इसमें सेना का एक कैंप भी इसकी चपेट में आ गया जिसमें एक मेजर शहीद हो गए हैं और हालांकि 7 जवानों को बचा लिया गया। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक दूसरी खबर है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जो अब नहीं है, उनका परिवार बहुत इंटरेस्टेड नहीं था, उनमें उन्होंने बहुत रुचि नहीं दिखाई, इसलिए उन्होंने पद्म पुरस्कार की सूची से हटा दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि निर्भया फंड, जो आपको याद होगा दिसंबर 2012 में एक पैरामेडिक स्टूडेंट थी दिल्ली की, निर्भया उसका नाम दिया गया, उसे उसका जो बलात्कार हुआ था दिल्ली की एक चलती हुई बस में, उसकी याद में एक फ़ंड बनाया गया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए और 1,000 करोड़ हर साल इस फंड में सरकार देती रही है, लेकिन 2013 से लगातार इसमें एक भी पैसा खर्च नहीं हो पाया है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए अमर शर्मा। एक बार फिर लौटते हैं अमेरिका की खबर पर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालते ही दुनिया में ये बहस तेज हो गई है कि क्या वो परमाणु बमों के मामले में बरती जाने वाली गंभीरता और जिम्मेदारी दिखा सकेंगे। लेकिन ये सवाल सिर्फ अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप के लिए ही नहीं है, दुनिया में और भी देश हैं जो परमाणु बम से हमला कर सकते हैं। आज दुनिया जहान में यही जानने की कोशिश है कि अगर बड़े देश परमाणु हमला करने का फैसला कर लें तो उसे अमल में लाने की कवायद कैसे पूरी होती है। निखिल रंजन से सुनिए रूथ अलेक्जेंडर की खास रिपोर्ट।
दुनिया जहान। बीते हफ्ते वॉशिंगटन में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से कुछ ही घड़ी पहले कैमरे की नजर से कहीं दूर डोनाल्ड ट्रंप को एक प्लास्टिक कार्ड सौंपी गई। ये कार्ड हजारों परमाणु बमों को इस्तेमाल करने की वो चाबी है जो लाखों लोगों की जान ले सकती है। पूर्व राष्ट्रपतियों ने बहुत समय देकर इस भयानक ताकत को संभालने के लिए खुद को तैयार किया है। ये वो लम्हा होता है जब अमरीकी सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। लेकिन अमरीका अकेला नहीं है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। मौजूदा वक्त में कम से कम 8 और देश हैं जो परमाणु हमला कर सकते हैं। दुनिया जहान में आज हम यही जानने की कोशिश में हैं कि दुनिया के बड़े देशों के प्रमुख अगर परमाणु बम इस्तेमाल करना चाहें तो उनके और परमाणु बम के बटन के बीच कितनी दूरी रहती है। शुरुआत करते हैं अमरीका से। ब्रूस ब्ला अमरीका के भूतपूर्व परमाणु मिसाइल लॉन्च अधिकारी हैं। 1970 के दशक में वो मोंटाना की पहाड़ों की तलहटी में बने परमाणु नियंत्रण केंद्र में काम करते थे।
It would take us no more than about 1 minute to carry out a launch upon receipt.
परमाणु हथियार दागने के लिए आदेश मिलने के बाद हमें सिर्फ 1 मिनट लगते हैं लॉन्च करने में। अमेरिकी सुरक्षा तंत्र में सिर्फ एक शख्स परमाणु हथियार के इस्तेमाल के लिए आदेश दे सकता है और वो है राष्ट्रपति।
So the president is always accompanied around the clock.
इसी वजह से राष्ट्रपति 24 घंटे अपने साथ एक सैन्य सहायक रखते हैं। उसके पास एक ब्रीफकेस होती है जिसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहते हैं।
काले रंग वाला चमड़े का ब्रीफकेस दिखने में आम जैसा ही है और इसमें संचार के उपकरण होते हैं जिनके जरिए राष्ट्रपति अपने वरिष्ठ सलाहकारों, सेना प्रमुखों और रणनीतिक कमान के प्रमुखों से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ब्रीफकेस में कुछ और भी होता है।
A sort of cartoon version of the war plan manual.
जंग की योजना के नियमों का एक कार्टून प्रारूप होता है। एक पन्ने में ग्राफिक्स के जरिए इसका ब्यौरा होता है कि क्या योजना है, कितने हथियार इस्तेमाल होंगे, क्या निशाना होगा, कितने लोगों की जान जा सकती है। ये सब देखकर आसानी से कुछ ही सेकंड में कोई भी समझ सकता है कि क्या होगा।
अमरीका के पास हजारों परमाणु हथियार हैं जिनका नियंत्रण राष्ट्रपति के हाथों में है। इन्हें समुद्र तल में पनडुब्बियों पर रखा गया है। राष्ट्रपति हथियार दागने का आदेश पेंटागन के वॉर रूम को देते हैं। पहले उन्हें अपने पहचान की पुष्टि करानी होती है और यही काम आता है प्लास्टिक कार्ड। राष्ट्रपति अपना कोड बताते हैं। ये वो चाबी है जो अकल्पनीय बर्बादी का सामान एक पल में जुटा सकती है। ১৯৭৩ में ब्रूस ब्ला और उनके साथी मैक टिमोथी ड्यूटी पर थे। सामने मौजूद कंप्यूटर स्क्रीन पर 10 मिसाइलों की स्थिति नजर आ रही थी जो उनके नियंत्रण में थे।
So I retrieved the launch keys and launch codes from the safe.
संदेश मिला, फिर हमने परमाणु युद्ध के लिए अपनी तैयारियों की जांच की, लॉन्च की और पासवर्ड निकाला और कुर्सी पर बैठकर पेटी बांध ली। हमसे कहा गया था कि मिनट भर में सोवियत इलाके से आ रहे परमाणु मिसाइल से धमाका होगा, जिसके तुरंत बाद हमें परमाणु मिसाइल दागना था। हम इंतजार करते रहे,
लेकिन परमाणु मिसाइल नहीं आए और युद्ध टल गया। इस तरह के कई मौके आए, लेकिन क्या होगा अगर राष्ट्रपति बिना किसी उकसावे के खुद ही परमाणु युद्ध करने का फैसला कर लें? क्या ये मुमकिन है कि अधिकारी उनका आदेश मानने से मना कर दे?
The battle staff is trained to carry out the orders of the president, period.
अधिकारियों को इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि वो राष्ट्रपति का हुक्म माने।
नियंत्रण से बाहर जा रहे किसी राष्ट्रपति को रोकना बहुत मुश्किल है। राष्ट्रपति को परमाणु हमले का आदेश देने के लिए किसी और की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं। ये तो हुई अमरीका की बात, लेकिन रूस का परमाणु तंत्र कैसे काम करता है? रूस में भी अमरीका के न्यूक्लियर फुटबॉल की तरह ही एक ब्रीफकेस है जो राष्ट्रपति से कभी भी दूर नहीं रहता। ईगर सचगिन हथियार विशेषज्ञ हैं और अब वो एक ब्रिटिश थिंक टैंक से जुड़े हैं और दुनिया भर के हथियारों पर रिसर्च करते हैं।
Usually it's 10-20 meters when president is sleeping, for instance.
जब राष्ट्रपति सो रहे होते हैं तब भी ये उनसे महज 10 से 20 मीटर की दूरी पर होता है। उनका एक सहायक दूसरे कमरे में ब्रीफकेस के साथ रहता है जो उन्हें जगा सकता है।
अगर रूस पर परमाणु हमला होता है तो ब्रीफकेस में अलार्म बजने के साथ ही रोशनी भी जलेगी और राष्ट्रपति को तुरंत बताया जाएगा।
He is the supreme commander. It's his responsibility and his right to decide.
राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होते हैं, इसलिए फैसला करना उनकी जिम्मेदारी और अधिकार है। वो आकर ब्रीफकेस खोलते हैं और अपने सहयोगियों से बात करते हैं।
Everybody in the, you know, chain of command will see just blinking.
चेन ऑफ कमांड में बहुत से लोग होते हैं और हर किसी के सामने एक बत्ती जलती है जिससे उन तक आदेश पहुंचता है। उन्हें वास्तव में इसका अंदाजा नहीं होता कि हो क्या रहा है।
इसका मतलब है कि बहुत कम आसार है कि हमले का बटन आदेश मिलने के बाद भी नहीं दबाया जाए। हमले में शामिल बहुत से सैन्य अधिकारी अपने इस तंत्र का अक्सर परीक्षण करते रहते हैं और दूसरे अधिकारियों को पता नहीं होता कि वो सचमुच हमला कर रहे हैं या फिर अभ्यास।
They will just receive the order, load flight plan number 2.
उन्हें सिर्फ आदेश मिलता है कि load the flight plan number 2, और इसके बाद बस वो इतना ही जान पाते हैं कि शायद ये flight plan training के लिए था। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मिसाइल दागने में क्रू की तरफ से कोई मनोवैज्ञानिक समस्या ना हो। वो ये कभी नहीं जान सकते कि मिसाइल सचमुच दागा जाएगा या नहीं।
ये सिर्फ इसलिए ताकि पता चल सके कि तंत्र पर कितना भरोसा किया जा सकता है। अटलांटिक सागर में हर वक्त कोई ना कोई पनडुब्बी रहती है जिसके बारे में ना तो जानकारी होती है और ना ही उसे जाना जा सकता है। वो सागर की परतों में चुपके चुपके कदम बढ़ाती है। प्रोफेसर पीटर हेनेसी द साइलेंट डीप के सहलेखक हैं, जो रॉयल नेवी सबमरीन सर्विस का इतिहास है। ब्रिटेन के पास 4 वन गॉड क्लास परमाणु पनडुब्बियां हैं, जिनमें से एक हमेशा गश्त पर और जरूरत पड़ने पर हमला करने के लिए तैयार रहती है। ब्रिटेन पर परमाणु हमला होने की सूरत में
Only the Prime Minister can authorize nuclear retaliation.
केवल प्रधानमंत्री हैं जो जवाबी परमाणु हमले के लिए हुक्म दे सकते हैं।
संदेश को लंदन के बाहर एक और बंकर में भेजा जाता है और फिर वहाँ से गश्त लगाती पनडुब्बियों तक। 2009 में BBC ने पनडुब्बियों को भेजे गए सिम्युलेटर संदेश को रिकॉर्ड किया था।
13-20-34. Okay, good copy received. Excellent. My half authenticate, sir.
We'll my half authenticate, sir.
Ship control, pipe the submarine to action station's missile for strategic launch.
Action stations, missile for strategic launch.
कल्पना कीजिए, चीन की तरफ दुश्मन का कोई परमाणु मिसाइल बढ़े तो सबसे पहले किसे पता चलेगा? तोंग झाओ कहते हैं कि जब तक मिसाइल गिर नहीं जाएगा कोई नहीं जान सकेगा। उनका कहना है कि चीन में कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है। तोंग झाओ बीजिंग के कार्नेगी शिंगुआ सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी में रिसर्च फेलो हैं।
चाइना विल वेट एंड विल राइड आउट द फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक।
चीन हमला करने से बचेगा क्योंकि चीन की नीति है कि हमला होने के बाद पहले इसकी पुष्टि की जाएगी कि परमाणु हमला हुआ है, फिर इसके बारे में समय लेकर जानकारी जुटाई जाएगी। ये देखा जाएगा कि हमले की प्रकृति कैसी है, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की जान गई है, और फिर इसके बाद जवाबी कार्रवाई के विकल्पों पर विचार होगा और तब उसमें सबसे बेहतर चुना जाएगा।
नीतिगत मामलों से जुड़े कई अधिकारी मानते हैं कि हमले के बारे में पहले से पता न होने की सूरत में मुमकिन है कि अगर आप हमला होने का इंतजार करते हैं तो जिन नेताओं को जवाबी कार्रवाई का फैसला करना है वो खुद ही उस हमले का शिकार बन जाएं, या फिर वो हथियार जिन्हें सुरक्षा के लिए बाहर निकाला जाना है।
That's exactly right, but China has made great efforts to protect their leadership and their nuclear forces.
आपका कहना सही है, लेकिन चीन ने अपने नेताओं और परमाणु हथियारों की सुरक्षा के लिए जबरदस्त इंतजाम किए हैं। पहले हमला करने से बचने के लिए चीन ने जमीन के भीतर काफी गहराई में बहुत लंबी सुरंगें बनाई हैं। कई सुरंग तो हजारों मीटर की गहराई पर हैं और उनके ऊपर जमीन पर पहाड़ी इलाका है।
तो जब पहाड़ों से धुआं उठ रहा होगा, नीचे सुरंग में कौन होगा जो हमले के बारे में फैसला करेगा?
It's all classified, but based on open source research, people in general believe that
ये गोपनीय है, लेकिन रिसर्च करने वाले लोगों का अंदाजा है कि इसके बारे में सेना का फैसला कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो की सबसे उच्च स्थायी कमेटी के पास जाता है।
हमले का अंतिम फैसला राष्ट्रपति लेते हैं या फिर खुद कमेटी?
We don't know.
हमें पता नहीं है।
मौजूदा वक्त में चीन बदल रहा है, मतलब एक और देश अर्ली वार्निंग सिस्टम को अपने यहाँ लगाने की तैयारी में है। परमाणु हथियारों को बनाने वाले हाथों में ही दुनिया को उसे बचाने की भी चाबी है। चेन ऑफ कमांड में आखिरी सीढ़ी पर मौजूद अधिकारी विशाल खतरे का अनुमान कर अंतर्मन की आवाज पर अपने हाथ रोक सकते हैं, और यही आवाज शायद परमाणु हथियारों के कहर के सामने दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, वो आवाज जो हमें इंसान बनाती है।
इस रिपोर्ट के बारे में लिखिएगा अपनी राय। आज से भारत और इंग्लैंड के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला शुरू हो रही है। पहला मैच कानपुर में खेला जाएगा। तो सुनते हैं खेल की खबरें।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। विश्व प्रसिद्ध जमैका के धावक यूसेन बोल्ट के खाते से एक गोल्ड मेडल कम हो गया है। 2008 ओलंपिक खेलों के 4x100 मीटर रिले रेस के उनके साथी नेस्टा कार्टर डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसका खमियाजा जमैका की पूरी टीम को उठाना पड़ा है। इस टीम को डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया है। त्रिनिदाद और टोबैको की टीम इस रिले में दूसरे नंबर पर रही थी, जिसके बाद इस टीम को गोल्ड मेडल मिलना तय है। और अब बात क्रिकेट की। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज में जीत के बाद अब भारतीय टीम की T20 में जीत की कोशिश पर हैं। दोनों टीमों के बीच आज से 3 T20 मैचों की सीरीज का आगाज कानपुर मुकाबले से हो रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने वाले कई खिलाड़ी T20 का हिस्सा नहीं हैं। भारतीय चयनकर्ताओं ने T20 के लिए युवा खिलाड़ियों पर जोर दिया है, जिनमें सबसे बड़ा नाम विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का है। उनके अलावा सलामी बल्लेबाज मनदीप सिंह, गेंदबाज युजवेंद्र चहल और परवेज रसूल जैसे युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अपने युवा ब्रिगेड पर कप्तान विराट कोहली कहते हैं,
हमने टीम में कुछ युवा खिलाड़ियों को शामिल किया है जिन्हें हम सीनियर खिलाड़ियों के साथ ग्रूम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें इंटरनेशनल T20 से कॉन्फिडेंस मिले, फिर हम उन्हें धीरे धीरे वनडे में उतार कर टेस्ट के लिए तैयार करेंगे, जो कि अल्टीमेट गोल है।
और वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में भारत की सानिया मिर्जा और क्रोएशिया के उनके जोड़ीदार इवान डॉडिच ने रोहन बोपन्ना और गैब्रियला डेब्रोव्स्की की जोड़ी को 6-4, 3-6, 12-10 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत के ही लियांडर पेस अपनी मिक्स डबल्स पार्टनर मार्टिना हिंगिस के साथ आज क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार मैक्सिको और अमेरिका की सीमा पर दीवार बनाने का काम तुरंत शुरू कर देगी। अमेरिका के मुख्य शेयर बाजार सूचकांक डाउ जोन्स ने पहली बार 20,000 पॉइंट का आंकड़ा पार कर इतिहास रचा है। लीबिया में जिहादी लड़ाकों ने अपने आखिरी बचे मजबूत गढ़ और देश के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण शहर बेनगाजी को गंवा दिया है। सैन्य नेता फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर के प्रति वफादार सैन्य बलों का कहना है कि उन्होंने आखिरकार स्थानीय इस्लामिक लड़ाकों को गनफावदा जिले से खदेड़ दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता और शोधकर्ता बेला भाटिया को सरकार ने पूरी सुरक्षा मुहैया करवाई है। बस्तर में उनके रहने को लेकर भी जिला कलेक्टर को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत की यह स्वभाव यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया अजित सारथी ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।